जब कोई नियम टूटता है ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है, मतलब गलती हुई और फिर उसकी एक सजा मिलेगी।
हाँ, एकदम सीधा सा गणित है, कॉज एंड इफेक्ट वाला लॉजिक।
बिल्कुल, नियम टूटा तो परिणाम भुगतना होगा। ये ढांचा ना हमें एक तरह की सुरक्षा देता है, लेकिन लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि किसी ने सबसे अहम वादा तोड़ दिया हो और सजा मिलने की बजाय सजा की जगह उस व्यक्ति को एक शानदार दावत का निमंत्रण मिल जाए।
अरे, ये तो पूरा गणित ही उल्टा हो गया
है ना, बिल्कुल उल्टा लगता है। और आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम बिल्कुल इसी बात पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर जॉन ऑसवाल्ट ने यशाया, जिसे अजाया भी कहते हैं, उसके अध्याय 54 और 55 का जो बहुत ही गहन अध्ययन किया है, हम आज उसी के नोट्स का विश्लेषण करेंगे।
और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।
हाँ, और मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी धार्मिक या राजनीतिक विचार का समर्थन नहीं कर रहे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इन प्राचीन ग्रंथों में मौजूद मानवीय मनोविज्ञान, शर्म और अनुग्रह, मतलब जिसे ग्रेस कहते हैं, उसके दर्शन को निष्पक्ष रूप से समझना है।
बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक प्राचीन किताब की बात नहीं है, ये इंसानी फितरत की बात है। ऑसवाल्ट के इन 26वें सत्र के नोट्स में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। आइजेया के पिछले अध्यायों में ना सिर्फ एक उम्मीद थी कि यहाँ कुछ अच्छा होगा,
एक भविष्य की उम्मीद।
हाँ, लेकिन अध्याय 54 तक आते आते वो उम्मीद अचानक एक निमंत्रण बन जाती है, मतलब आओ और इस दावत में हिस्सा लो अभी इसी वक्त।
ये बहुत अजीब है, मतलब ये निमंत्रण जिन लोगों को दिया जा रहा था उनकी मानसिक स्थिति तो जश्न मनाने वाली बिल्कुल नहीं थी ना। नोट्स में एक बांझ महिला का रूपक इस्तेमाल किया गया है।
हाँ, उस महिला को गाने और अपना तंबू बड़ा करने के लिए कहा जा रहा है।
एक मिनट, अगर हम उस पुराने समाज के नजरिए से सोचें तो बांझपन सिर्फ एक दुख नहीं था, वो तो पहचान मिट जाने का सबसे बड़ा डर था।
सही बात है, इसे उन निर्वासित इसराइलियों से जोड़कर देखिए, वे सब कुछ खो चुके थे। उनका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक डर क्या था? यही कि वे पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे,
कि उनकी संस्कृति हमेशा के लिए मिट जाएगी।
एग्जैक्टली, और उस घोर निराशा के बीच उनसे वादा किया जाता है कि तुम्हारे वंशज इतने बढ़ेंगे कि तुम्हें अपना तंबू बड़ा करना पड़ेगा। ये असंभव सा वादा था उनके लिए।
उस डर को ना डॉक्टर ऑसवाल्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन उपमा से समझाया है। उन्होंने इसे एक टूटी हुई कुर्सी कहा है।
अरे हाँ, वो कुर्सी वाला उदाहरण बहुत सटीक है।
मतलब मान लीजिए कोई एक बहुत ही मजबूत दिखने वाली कुर्सी पर पूरे विश्वास के साथ बैठता है, उसे लगता है कि कुर्सी उसका वजन संभाल लेगी, लेकिन लेकिन जैसे ही वो बैठता है कुर्सी अचानक टूट जाती है
और वो जमीन पर गिर जाता है।
हाँ, और आसपास के लोग हंसने लगते हैं। वो जो एहसास है ना, जब आपका सबसे गहरा विश्वास आपको धोखा दे दे और आप सबके सामने गिर जाए, वो शर्म है।
और निर्वासित लोगों की स्थिति बिल्कुल उसी जमीन पर गिरे हुए व्यक्ति जैसी थी। उन्हें लग रहा था कि जिस ईश्वर पर उन्होंने अपना सब कुछ टिका रखा था, वो कुर्सी एन मौके पर टूट गई।
उनका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था।
बिल्कुल, दुनिया उन पर हंस रही थी, तो ऐसे में किसी भी नए वादे पर यकीन करना, मतलब वो लगभग नामुमकिन था उनके लिए।
तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है। मैं सोच रही थी कि जब भरोसा इस कदर टूट जाए तो वे उस टूटी हुई कुर्सी के डर से बाहर कैसे आए, वे इस नए निमंत्रण पर भरोसा कैसे कर सकते हैं।
देखिए, इसका जवाब ना उस ईश्वर के वास्तविक चरित्र को समझने में छिपा है। नोट्स में ईश्वर के कई नाम आते हैं, रचयिता, सेनाओं का प्रभु, पति, उद्धारकर्ता।
हाँ, इसराइल का पवित्र।
बिल्कुल, और यहाँ अरस्तु के दर्शन से एक बहुत गहरी तुलना की गई है।
कॉन्सेप्ट,
हाँ, वही।
अरस्तु का लॉजिक बहुत सीधा था। उनका मानना था कि जो सर्वोच्च शक्ति है, जो असीम है, वो भावनाओं में नहीं उलझ सकती,
क्योंकि अगर वो क्रोध या प्रेम महसूस करेगी तो मतलब वो किसी बाहरी चीज से प्रभावित हो रही है ना।
है ना, सही बात है। और अगर वो प्रभावित हो रही है तो वो सर्वोच्च कैसे रही? इसलिए अरस्तु का ईश्वर एक ठंडी तार्किक शक्ति था। लेकिन आइजेया में जिस ईश्वर का वर्णन है वो इस यूनानी विचार को पूरी तरह चुनौती देता है।
मतलब वो असीम तो है लेकिन एक व्यक्तिगत रक्षक भी है।
एग्जैक्टली, और इसी जुड़ाव को समझाने के लिए हिब्रू शब्द हेसेद का इस्तेमाल हुआ है।
हेसेद मतलब अनंत प्रेम या करुणा।
लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन होती है। एक तरफ हम क्रोध की बात करते हैं और दूसरी तरफ हेसेद की। इन दोनों में बैलेंस कैसे बनता है?
इस बैलेंस को समझने के लिए हिब्रू भाषा की जड़ों में जाना होगा। नोट्स बताते हैं कि ईश्वर का क्रोध सिर्फ एक पल का है, लेकिन हेसेद हमेशा के लिए है।
करुणा के लिए जो मूल शब्द है ना, वो RHM अक्षरों से बना है।
RHM
इसका क्या मतलब है?
इसका जैविक संबंध गर्भ से है, यानी वूम।
अरे वाह, सच में ये तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब उस दौर में जब देवताओं को क्रूर योद्धा माना जाता था, वहाँ करुणा की तुलना एक माँ के गर्भ से की जा रही है।
हाँ, ये कोई सतही दया नहीं है, ये माँ के गर्भ जैसी सुरक्षा और असीम गहराई है। जब बच्चे खुद को बर्बाद करते हैं तो माता पिता को गुस्सा आता है, वो गुस्सा उनके प्यार का ही हिस्सा है।
क्योंकि वे परवाह करते हैं।
बिल्कुल, लेकिन गुस्सा उनकी मूल पहचान नहीं है। मूल पहचान वो RHM वाला मातृत्व ही है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे उठाने वाला हाथ किसी ठंडी शक्ति का नहीं बल्कि इस गर्भ जैसी करुणा वाले रक्षक का है, तब वो फिर से भरोसा कर पाता है।
और इसी करुणा का जो अंतिम परिणाम है ना, उसे शांति का अनुबंध कहा गया है। इसके लिए शालोम शब्द का इस्तेमाल हुआ है।
हाँ।
लेकिन हम तो शांति का मतलब बस यही समझते हैं कि लड़ाई बंद हो गई।
हाँ, जो कि शांति की बहुत ही अधूरी परिभाषा है। शालोम का असली मतलब सिर्फ युद्ध विराम नहीं है, इसका मतलब है पूर्णता, एकदम गहरा मेल मिलाप,
रिकॉन्सिलिएशन।
बिल्कुल, इसे गिनती की किताब में फिनाज के अनुबंध और इजेकील की भविष्यवाणियों से जोड़ा गया है, और रोमियो के अध्याय 5 में तो ये भी बताया गया है कि यीशु मसीह के माध्यम से दुश्मन भी पूरी तरह जुड़ जाते हैं।
ये कोई कागजी समझौता नहीं है। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या कहिए एक प्रैक्टिकल सवाल है मेरा।
हाँ बताइए।
इंसान की फितरत है कि जो मुफ्त में मिलता है उसकी कद्र नहीं होती। अगर ये शालोम सिर्फ ग्रेज के तौर पर बिना किसी कीमत के मिल रहा है, तो क्या ये मनमानी करने की खुली छूट नहीं दे देता? मतलब अगर मुझे पता है कि मेरी गलतियों को इस असीम करुणा से माफ कर ही दिया जाएगा, तो मैं खुद को क्यों बदलूं? मैं नियम क्यों मानूं?
ये बहुत ही शानदार सवाल है। और आपको बताया, ये खुली छूट वाला जो सवाल है ना, ये ईसाई इतिहास की सबसे बड़ी धार्मिक बहसों के केंद्र में रहा है।
अच्छा।
हाँ, आइज़ाया 44 में एक बात कही गई है, धार्मिकता में स्थापित होना। इसकी तुलना एक हीरे से की गई है जो अपनी जगह पर मजबूती से जड़ा हुआ है। और यहीं से मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली के बीच का ऐतिहासिक वैचारिक अंतर सामने आता है।
लूथर का विचार तो उस समय बहुत क्रांतिकारी था, लोग कर्म कांडों से खुद को अच्छा साबित कर करके थक चुके थे।
बिल्कुल, और लूथर की खोज ये थी कि मनुष्य को धर्मी गिना जा सकता है,
मतलब काउंटेड राइचस।
इस एक विचार ने तो जैसे उनके कंधों से सारा बोझ ही उतार दिया होगा।
हाँ, ये एक बड़ी आत्मिक राहत थी। उन्हें लगा कि अब अपनी योग्यता साबित करने का संघर्ष खत्म हो गया। लेकिन जॉन वेस्ली ने कुछ सदियों बाद इसमें एक जरूरी आयाम जोड़ा।
वेस्ली ने क्या कहा? उनका मानना था कि केवल धर्मी गिना जाना काफी नहीं है, मनुष्य मसीह के माध्यम से धर्मी बनने में सक्षम भी होता है, मतलब enabled to be righteous।
अरे, मतलब सिर्फ कागज पर बरी होना काफी नहीं है, आपके स्वभाव में असली बदलाव आना चाहिए।
एग्जैक्टली। और अगर बदलाव नहीं आता तो हम उसी खुली छूट वाली समस्या में फंस जाते हैं जो आपने अभी पूछी थी। डॉक्टर ऑसवर्ल्ड ने जॉर्ज बारना के एक चौंकाने वाले शोध का जिक्र किया है यहाँ।
हाँ, वो रिसर्च जो बताती है कि आज के समय में खुद को बचाए गए मानने वाले लोगों और आम लोगों की जीवन शैली में कोई खास अंतर नहीं बचा है।
बिल्कुल, दोनों के झूठ बोलने, धोखा देने या तलाक लेने के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। ये वेस्ली के डर को सच साबित करता है। इसीलिए अध्ययन जोर देता है कि उद्धार एक दोतरफा विषय है, ये सिर्फ नरक से बचाव नहीं है, ये जीने का एक नया तरीका है।
और अगर कोई सिर्फ बचाए जाने पर ध्यान दे और स्वभाव न बदले तो वो सिर्फ नाटक कर रहा है। यहाँ सेमिनरी मतलब धार्मिक शिक्षण संस्थानों की एक गंभीर चेतावनी भी दी गई है।
हाँ, कि वे जगहों बहुत खतरनाक हो सकते हैं,
क्योंकि वहाँ लोग भीतर से बदले बिना सिर्फ आध्यात्मिक होने का दिखावा करना सीख लेते हैं। प्रार्थना में कौन से शब्द बोलने हैं, कैसे विनम्र दिखना है, ये सब एक कला बन जाती है।
सही बात है। और अगर ये दिखावा इतना आम है तो फिर असल वास्तविकता को कैसे जिया जाए? इसका जवाब उस निमंत्रण में है जिसे स्वीकार करने की एक समय सीमा है।
समय सीमा।
हाँ, यहाँ महिमा या ग्लोरी की बात आती है। हम सोचते हैं ग्लोरी मतलब कोई सुनहरी रोशनी या रहस्यमयी चमक।
हाँ, जो आती है और गायब हो जाती है।
लेकिन पुराने नियम में महिमा का मतलब है ठोस वास्तविकता, सॉलिडिटी, जैसे कोई पक्की ईंट की दीवार हो। और इस ठोस वास्तविकता को अनुभव करने के लिए एक अर्जेंसी है, जब तक वो मिल सकता है।
ये अर्जेंसी डराने वाली भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो समय निकल गया तो।
यहाँ हारून बूर का एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण दिया गया है। हाँ, हारून बोर्ड ने महज 17 साल की उम्र में उस पुकार को ये कह के ठुकरा दिया था कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लूंगा।
और फिर जीवन भर उसने कभी वो आध्यात्मिक एहसास दोबारा महसूस नहीं किया। उसने मौका हमेशा के लिए खो दिया।
बिल्कुल। एक और घटना 1951 के चेरोकी मेंटल इंस्टीट्यूट की है। वहाँ एक पादरी के बेटे ने पवित्र आत्मा के निमंत्रण को जानबूझकर ठुकरा दिया था।
ये दिखाता है कि जब वो ईंट की दीवार जैसी सच्चाई सामने हो तो मुंह फेरना कितना विनाशकारी हो सकता है। अनुग्रह हमेशा उपलब्ध हो सकता है, लेकिन इंसान का मन कठोर हो जाता है।
एग्जैक्टली। और यही मानवीय और ईश्वरीय सोच का अंतर आता है। मेरी सोच तुम्हारी सोच जैसी नहीं है।
हम इंसानों की फितरत हर चीज कमाने की होती है ना? हम सोचते हैं अच्छे काम करेंगे तो ग्रेस खरीद लेंगे।
हाँ, जैसे वो 5वीं पीढ़ी के मेथडिस्ट लोगों का उदाहरण है। वे बहुत अच्छे इंसान हैं, कोई बुरा काम नहीं करते, लेकिन समस्या ये है कि वे अपने अच्छे कर्मों को करेंसी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं
अनुग्रह कमाने के लिए।
हाँ,
जबकि ईश्वर का तरीका लेन देन का है ही नहीं।
तो क्या हम इंसान कभी वो असीम हिस्से दिखा सकते हैं?
नोट्स के अनुसार पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हम अपने दुश्मनों से प्यार करके उसी प्रकार का प्यार जरूर दिखा सकते हैं।
और ये क्षमता तभी आती है जब ईश्वरीय वचन भीतर काम करे। वो वचन कभी खाली नहीं लौटता। उसकी तुलना उस बारिश से की गई है जो धरती को हरा भरा किए बिना वापस नहीं जाती।
और ये बारिश किसी टूटे हुए इंसान को कैसे बदल देती है, इसका सबसे शक्तिशाली प्रमाण लुईस ज़ैम्पेरिनी की कहानी है।
अरे, वो कहानी तो रूह कंपा देने वाली है। 1936 के महान ओलंपिक धावक।
हाँ, और द्वितीय विश्व युद्ध में उनका विमान प्रशांत महासागर में क्रैश हो गया। वी जापानी सेना के बंदी बन गए
और उस जापानी जेल में द बर्ड नाम के गार्ड ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश की।
जब ज़ैम्पेरिनी वापस अमेरिका लौटे ना, तो वे बाहर से आजाद थे, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे।
उन्हें भयंकर PTSD था।
वो बुरे सपनों के कारण सोते हुए अपनी ही पत्नी का गला घोटने लगे थे। उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी।
लेकिन फिर 1949 में बिली ग्राहम की एक टेंट मीटिंग में उनकी जिंदगी बदल गई।
हाँ, उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और रातों रात बुरे सपने गायब हो गए। उन्हें वो असली शालोम मिला जिससे उन्होंने अपने जापानी पहरेदारों को भी माफ कर दिया।
ज़ैम्पेरिनी की ये कहानी पूरे विषय का निष्कर्ष है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईश्वर अपनी सत्यता और अपनी चिरस्थायी साख हम इंसानों के बदले हुए जीवन पर टिकाता है।
इसे ही ईश्वर का असीम आत्मविश्वास या हुत्स्पा कहा गया है।
जरा सोचिए, ब्रह्मांड का रचयिता अपनी वास्तविकता साबित करने के लिए रोज आसमान में चमत्कार नहीं करता।
वो ज़ैम्पेरिनी जैसे टूटे हुए इंसानों को चुनता है।
हाँ, हम इंसान ही उस वास्तविकता के जीवित प्रमाण है।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो हम कह सकते हैं कि सच्चा अनुग्रह कोई फ्री पास नहीं है जिससे आप मनमानी कर सके।
बिल्कुल नहीं।
ये उस ठोस वास्तविकता, उस ईंट की दीवार जैसी ग्लोरी से पूरी रफ्तार से टकराना है, और उसके बाद आप वही इंसान नहीं रह सकते। ये जीवन का पूर्ण काया पलट है।
सही बात है।
ये केवल धर्मी गिने जाने की बात नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को रोज जीने की बात है। और इस गहन चर्चा के अंत में हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।
बताइए।
देखिए, अगर एक बदला हुआ इंसानी जीवन ही ईश्वर के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है, मतलब इंसानियत ही सत्य का इकलौता होर्डिंग है, तो आज के समाज को देखकर एक सवाल उठता है।
बहुत बड़ा सवाल।
आज जो दुनिया में इतना अविश्वास और नास्तिकता है, क्या उसका कारण चमत्कारों की कमी है, या फिर इसका असली और कड़वा कारण ये है कि जो लोग सत्य का दावा करते हैं वे केवल फ्री पास बांट रहे और उनके खुद के जीवन में उस ठोस वास्तविकता की कमी है?
सोचने वाली बात है।
शायद अविश्वास ईश्वर के खिलाफ नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक दिखावे के खिलाफ है। अगर दुनिया को सत्य के नाम पर सिर्फ टूटी हुई कुर्सियां मिलेंगी तो वे भरोसा कैसे करेंगे? क्या हम वो ठोस वास्तविकता बन रहे हैं या सिर्फ एक और टूटी हुई कुर्सी? ये एक ऐसा सवाल है जो सत्य की खोज करने वाले हर जिज्ञासु को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा।